आज हम कल्चरल रेवोल्यूशन इन चाइना, चीन में महान सांस्कृतिक क्रांति का काल पर परिचर्चा करेंगे। आइए चीन में महान सांस्कृतिक क्रांति के बारे में जानने से पहले उन परिवर्तनों को जानें जो इसका सूत्रधार रहे। सांस्कृतिक क्रांति का श्री गणेश। सन 1911 में चीन में राज्य क्रांति हुई थी, जिस द्वारा मंचू राजवंश के निरंकुश व स्वेच्छाधारी शासन का अंत कर रिपब्लिक की स्थापना की गई थी। सन 1949 में कम्युनिस्ट पार्टी ने देश के शासन को अधिगत कर लिया था और कुमिंगतांग को बहिष्कृत कर समाजवाद के अनुसार राजनीतिक आर्थिक व्यवस्था की स्थापना का आरंभ किया गया। सन 1966 में चीन में सांस्कृतिक क्रांति का सूत्रपात हुआ और यह क्रांति 1973 तक भी पूर्ण नहीं हो पाई थी। चीन के आधुनिक इतिहास में सन 1966 का महत्व 1911 और 1949 के ही समान है, क्योंकि इस वर्ष में वहां ऐसे परिवर्तनों का आरंभ हुआ जिन्होंने देश को एक नए क्रांतिकारी मार्ग पर डाल दिया है। माओ त्से-तुंग के नेतृत्व में चीन ने समाजवादी व्यवस्था को स्थापित करने के लिए जो अग्रगामी लंबी छलांग लगाई थी, जिसे अंग्रेजी में हम ग्रेट लीप फॉरवर्ड कहते हैं, के बारे में आप जानते हैं। अनेक विघ्न बाधाओं के बावजूद चीन अपने इस नए कार्यक्रम पर दृढ़ रहा था और उसमें उसने अच्छी सफलता भी प्राप्त कर ली थी, पर रूस सदृश बहुसंख्यक कम्युनिस्ट देश चीन की इस क्रांतिकारी नीति को आशंका की दृष्टि से देखते थे और यह समझते थे कि माओ त्से-तुंग एक ऐसे मार्ग के अनुसरण में तत्पर है जो न केवल अक्रियात्मक है अपितु अनुचित भी है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी में भी बहुत से ऐसे लोग थे जो इस नीति के विषय में माओ त्से-तुंग से असहमत थे। अग्रगामी लंबी छलांग के कार्यक्रम को क्रियान्वित करते समय जो अनेक विघ्न बाधाएं उपस्थित हुई थी, उन्हें दूर करने के लिए चीन में कतिपय ऐसी व्यवस्थाएं भी की गई थी जो माओ त्से-तुंग के विचारों के प्रतिकूल थी। अनेक स्थानों पर किसानों को ऐसे खेत दे दिए गए थे जिनकी पैदवार के वे स्वयं मालिक थे और जिसे वे स्वेच्छापूर्वक बाजार में बेच सकते थे। अधिक कार्य व श्रम करने पर अधिक पारिश्रमिक प्रदान करने की नीति को भी वहां अपना लिया गया था। माओ त्से-तुंग के विचार में ये बातें कम्युनिस्ट व्यवस्था के आदर्शों के अनुकूल नहीं थी। अग्रगामी लंबी छलांग के कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के लिए चीन को जिस कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था, उन्हें देखकर बहुत से कम्युनिस्ट नेताओं ने माओ त्से-तुंग की नीति का विरोध भी करना आरंभ कर दिया था और कतिपय ऐसे लेख व पुस्तिकाएं भी वहां प्रकाशित होनी शुरू हो गई थी जिनमें माओ के विरोध में विचार प्रकट किए गए थे। माओ के इन विरोधियों में सर्वप्रधान लियू साओची थे जो माओ के प्रमुख सहयोगी थे और 1959 में जिन्हें चीन के राष्ट्रपति पद पर नियुक्त किया जा चुका था। उनका मत था कि अब चीन में कम्युनिस्ट क्रांति पूर्ण हो चुकी है, पूंजीवादी का अंत हो गया है और समाजवादी व्यवस्था भली भांति स्थापित हो गई है। अब चीन के सम्मुख केवल यह कार्य शेष है कि देश की आर्थिक उन्नति के लिए अपनी संपूर्ण शक्ति लगा दी जाए ताकि चीन भी रूस व अन्य पूंजीवादी पाश्चात्य देशों के समकक्ष खड़ा हो सके। इस आर्थिक उन्नति के लिए चीन को भी वही मार्ग अपनाना होगा जिस द्वारा रूस, अमेरिका, पश्चिमी जर्मनी आदि देशों ने आर्थिक क्षेत्र में असाधारण उन्नति करने में सफलता प्राप्त की है। यह मार्ग है नए वैज्ञानिक साधनों को अपनाना और आर्थिक उत्पादन के लिए तकनीकी तरीकों को स्वीकार करना। लियू साओची और उनके साथी यह मानते थे कि देश की आर्थिक उन्नति के लिए वैज्ञानिक साधनों तथा नए तकनीकी आविष्कारों का प्रयोग तभी संभव है जब ये कार्य उन व्यक्तियों द्वारा संपन्न किए जाए जो इनके विशेषज्ञ हैं। आर्थिक उन्नति का नेतृत्व इन विशेषज्ञों के हाथों में ही रहना चाहिए। पर माओ त्से तुंग का मत इससे भिन्न था। उनका कहना था कि कम्युनिस्ट क्रांति अभी पूर्ण नहीं हुई है। चीन के समाज में जो विषमताएं पहले विद्यमान थी उनका तो अब अंत हो गया है, पर उनके स्थान पर नई विषमताएं उत्पन्न हो गई है। देश में एक ऐसा विशिष्ट वर्ग विकसित हो गया है जो सर्वसाधारण जनता से पृथक है। इस वर्ग में वे वैज्ञानिक, इंजीनियर, शिल्पी, प्रशासक तथा कम्युनिस्ट पार्टी के नेता हैं जो शिक्षा, ज्ञान तथा प्रशासन कार्य में विशिष्टता प्राप्त कर लेने के कारण अपने को सर्वसाधारण जनता से ऊंचा और पृथक समझने लगे हैं। इन द्वारा देश में एक ऐसा वर्ग उत्पन्न हो गया है जो सर्वसाधारण जनता की शक्ति और क्षमता में विश्वास नहीं रखता है, अपितु यह समझता है कि केवल इसी वर्ग के व्यक्तियों में वह योग्यता है जिससे देश की उन्नति के लिए उपयोगी नीति व कार्यक्रम को निर्धारित किया जा सकता है। सर्वसाधारण जनता में अभी यह क्षमता नहीं है कि वह यह समझ सके कि उसे अपनी उन्नति के लिए किन उपायों व साधनों का उपयोग करना चाहिए। माओ त्से तुंग की दृष्टि में यह विचार सारणी कम्युनिस्ट क्रांति के लिए अत्यंत हानिकारक थी। उनके मत में यह एक प्रकार का प्रतिक्रियावाद था जिसका परिणाम यह हो सकता था कि चीन कम्युनिज्म के क्रांतिकारी मार्ग का परित्याग कर फिर से पूंजीवाद को अपनाने लग जाए। उनके विचार में ख्रुश्चेव के नेतृत्व में कम्युनिस्ट रूस ने कम्युनिज्म के मार्ग का परित्याग कर दिया था और लियू शाओची तथा उनके साथी चीन में भी ऐसे मार्ग का अनुसरण करने के पक्षपाती थे जो कम्युनिस्ट आदर्शों के विपरीत था। माओ त्से तुंग का सर्वसाधारण जनता की शक्ति में अगाध विश्वास था। उनका कहना था कि जनशक्ति का उपयोग करके ही चीन ने जापान को परास्त किया है और कुमिंगतांग की शक्ति का अंत किया है और उसके नेतृत्व में ही अब आदर्श कम्युनिस्ट व्यवस्था को स्थापित किया जा सकता है। चीन भी कहीं रूस के समान प्रतिक्रियावादी मार्ग का अनुसरण ना करने लगे, इस बात का भरोसा तभी संभव है जबकि सर्वसाधारण जनता की क्रांतिकारी शक्ति पर विश्वास रखा जाए। देश की उन्नति के लिए योजनाएं बनाने का कार्य भी सर्वसाधारण जनता द्वारा ही किया जाना चाहिए। केवल संपन्न, सुशिक्षित वैज्ञानिक व विशेषज्ञ वर्ग द्वारा ही नहीं, क्योंकि इस वर्ग के लोगों को जनसाधारण की आवश्यकताओं का समुचित ज्ञान नहीं होता। इसमें संदेह नहीं कि कम्युनिस्ट क्रांति और अग्रगामी लंबी छलांग के कार्यक्रम के बावजूद चीन में सुशिक्षित, संभ्रांत तथा विशेषज्ञ लोगों का एक ऐसा विशिष्ट वर्ग विकसित हो गया था जो जनसाधारण से पृथक था। इनका रहन सहन सर्वसाधारण जनता से ऊंचे स्तर का था। इनके बच्चे अधिक अच्छे विद्यालयों में शिक्षा प्राप्त करते थे। इनके लिए यह भी संभव था कि अपने मित्रों, संबंधियों तथा कृपा पात्रों को उच्च पद प्राप्त करा सकें और स्वयं ऐसा जीवन व्यतीत करें जो जनसाधारण जीवन से अभिन्न था। ये समझते थे कि देश की उन्नति के लिए जिन योजनाओं की आवश्यकता है उसका निर्माण करने की क्षमता केवल इन्हीं लोगों में है और सर्वसाधारण को इन द्वारा निर्धारित नीति व कार्यक्रम में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। मनुष्य में यह स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है कि वे अपने तथा अपने पारिवारिक जनों के हितों को विशेष महत्व दें। कम्युनिस्ट चीन भी इसका अपवाद नहीं था। हजारों साल से चीन के समाज में अनेक प्रकार की विषमताएं तथा वर्गभेद विद्यमान थे। कम्युनिस्ट क्रांति और अग्रगामी लंबी छलांग भी इन विषमताओं को दूर नहीं कर सकी थी। इसी का यह परिणाम था कि चीन में भी संभ्रांत लोगों का एक ऐसा वर्ग उत्पन्न हो गया था जो सर्वसाधारण जनता की तुलना में अपनी विशिष्ट स्थिति से, जिसे सर्वथा स्वाभाविक और उचित प्रतीत होती थी। इसलिए अब तक भी चीन में एक ऐसे समाज का निर्माण नहीं हो सका था जो कम्युनिस्ट आदर्शों के अनुसार हो। जिस ढंग की कम्युनिस्ट व्यवस्था गत 15 वर्षों से चीन में स्थापित हुई थी उसमें नगरों का तो सुचारू रूप से विकास हो गया था पर देहातों की उन्नति पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया था। प्रायः सब बड़े कल कारखाने नगरों में स्थापित थे। देहातों से आकर लोग बड़ी संख्या में नगरों में निवास करने लगे थे और शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन आदि की सब सुविधाएं भी नगर निवासियों को प्राप्त थी। चीन के वैज्ञानिक, इंजीनियर, विशेषज्ञ, विद्वान, राजकीय पदाधिकारी और कम्युनिस्ट पार्टी के नेता सब प्रायः नगरों में निवास करते थे और देहातों की दुर्दशा की ओर उनका ध्यान भी नहीं जाता था। माओ त्से तुंग ने इस दशा को देखकर यह अनुभव किया कि चीन भी उसी मार्ग को अपना सकता है रूस ने जिसका अनुसरण किया है। वहाँ भी प्रतिक्रियावादी प्रवृत्तियाँ जोर पकड़ सकती हैं। लियु शाओची जैसे पुराने कम्युनिस्ट नेताओं के रुख को देखकर उन्हें यह आशंका हो गई थी कि चीन में भी कम्युनिज्म का भविष्य सर्वथा उज्ज्वल नहीं है। 1962 में ही उन्होंने इस संभावना की ओर लोगों का ध्यान आकृष्ट करना आरंभ कर दिया। अपने एक भाषण में उन्होंने कहा था, चीन के सरकारी पदाधिकारी और कम्युनिस्ट पार्टी के नेता अपने कर्तव्यों से विमुख होते जा रहे हैं। वे आराम से जीवन बिताना चाहते हैं, जनसाधारण से अपने को पृथक रखते हैं और अपने को जनता से ऊंचा समझते हैं। इस स्थिति में जनसाधारण का यह कर्तव्य है कि वह शासक वर्ग तथा नेताओं के कार्यों पर दृष्टि रखे, उनकी आलोचनाओं में तत्पर रहे और उन्हें कर्तव्य विमुख न होने दे। पर लियु शाओची और उनके साथियों का मत इससे भिन्न था। वे समझते थे कि चीन की सर्वसाधारण जनता अभी समुचित रूप से सुशिक्षित नहीं है। उसके लिए यह संभव ही नहीं है कि वह शासक वर्ग तथा कम्युनिस्ट नेताओं को सही मार्ग पर चलने के लिए विवश कर सके। यह सही है कि शासकों तथा पार्टी के नेताओं को कर्तव्य पालन के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। उनमें जो शिथिलता आती जा रही है उसे दूर करना अनिवार्य है, पर यह कार्य कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा ही किया जा सकता है, जनसाधारण द्वारा नहीं। इसी प्रयोजन से लियु शाओची ने कतिपय कम्युनिस्ट नेताओं की ऐसी मंडलियां संगठित की जिन्हें पार्टी में नवजीवन का संचार करने का कार्य सौंपा गया और उन्हें यह भी कहा गया कि वे शासक तथा विशिष्ट वर्ग को अपने कर्तव्यों से विमुख न होने दें। पर इन मंडलियों के सदस्य भी सम्भ्रांत वर्ग के ही थे और माओ त्से तुंग की सम्मति में वे उस कार्य के अयोग्य थे जो उन्हें सौंपा गया था। माओ को जनसाधारण की शक्ति में विश्वास था और उनके मत में सर्वसाधारण जनता ही शासक वर्ग तथा नेता वर्ग को सही मार्ग पर स्थिर रख सकती थी। सन 1961 में पेकिंग से एक नाटक प्रकाशित हुआ था जिसके लेखक वु हान थे, जो पेकिंग के डेप्टी मेयर भी थे। इसमें परोक्ष रूप से माओ त्से तुंग की नीति तथा कार्यकलाप की आलोचना की गई थी। चीन में इस नाटक की बहुत चर्चा हुई और यह समझा गया कि इस द्वारा मार्शल फेंग ते हुआई की नीति का समर्थन करने का प्रयास किया गया है। फेंग तू हुआई अग्रगामी लंबी छलांग के कार्यक्रम के विरोधियों के नेता थे और इसी कारण 1959 में उन्हें रक्षा मंत्री के पद से पृथक कर दिया गया था। वुहान के नाटक के कारण जो विवाद आरंभ हुआ उसके संबंध में तथ्य का पता करने के लिए एक कमेटी की नियुक्ति की गई जिसके अध्यक्ष पेंग चेन थे। ये पेकिंग के मेयर थे और वु हान के समर्थक माने जाते थे। 1966 में इस कमेटी की रिपोर्ट प्रकाशित हुई जो उसमें वास्तविक प्रश्न को टालने का प्रयत्न किया गया था। मई 1966 में पेंग चीन को पेकिंग के मेयर पद से पृथक कर दिया गया और चीन में उस वाद विवाद ने उग्र रूप धारण करना आरंभ कर दिया जिसकी शुरुआत वु हान के नाटक से हुई थी। इस वाद विवाद का रूप यह था कि बहुत से लोग विवादग्रस्त नीति एवं कार्यक्रम पर स्वतंत्रता पूर्वक अपने अपने विचार प्रकट करने लगे थे और अपने विचारों की अभिव्यक्ति के लिए वे हस्तलिखित पोस्टरों, हैंडबिलों तथा पुस्तिकाओं का आश्रय लेने लगे थे। चीन के आधुनिक इतिहास में जिसे सांस्कृतिक क्रांति कहते हैं, उसका श्री गणेश इसी पद्धति से हुआ है। वस्तुतः वुहान द्वारा लिखित नाटक उस प्रवृत्ति का मूर्त रूप था जो अग्रगामी लंबी छलांग के काल में चीन के बुद्धिजीवी तथा संभ्रांत वर्ग में उत्पन्न हो गई थी। इस वर्ग के व्यक्ति मौत से तुंग की नीति व कार्यक्रम को अक्रियात्मक तथा उपहासास्पद समझते थे और अपने उत्कर्ष के लिए प्रयत्नशील थे। वे अपने को जनता का स्वाभाविक नेता मानते थे और यह समझते थे कि देश की उन्नति के लिए योजनाएं बनाना उन्हीं का काम है। पर क्विमिंगतांग तथा जापान के विरुद्ध संघर्ष करते हुए चीन की सेना ने जनसाधारण की शक्ति का जिस ढंग से उपयोग किया था, उसके कारण जनता में अपने महत्व तथा स्थिति की चेतना उत्पन्न हो गई थी और वह उसकी अभिव्यक्ति के लिए उद्यत रहती थी। इसी का यह परिणाम हुआ कि 1966 में वुहान के नाटक के संबंध में विवाद आरंभ होने पर लोगों ने अपने विचारों को खुले तौर पर प्रकट करना आरंभ कर दिया। ये विचार प्रायः परस्पर विरोधी होते थे। जो जिस ढंग से सोचता, अपने मत को हाथ से लिखकर किसी प्रमुख स्थान पर चिपका देता। लोग इन्हें शौक से पढ़ते और उन पर विचार विमर्श करते। विश्वविद्यालय तथा अन्य शिक्षणालय इस विचार विमर्श तथा वाद विवाद के प्रधान केंद्र थे। वहां वाद विवादों ने इतना उग्र रूप प्राप्त कर लिया कि कुछ समय के लिए प्रायः सभी शिक्षणालय बंद कर दिए गए। वस्तुतः इस समय चीन की सर्वसाधारण जनता में एक नई क्रांति का सूत्रपात हो गया था, जिसका लक्ष्य अपने असंतोष को स्वच्छंदता के साथ प्रकट करना था। सब में इस प्रकार की भावना उत्पन्न हो गई थी जिन्हें समाज के नव निर्माण के लिए कुछ ना कुछ करना है। माओ त्से-तुंग चाहता था कि यह नई लहर अपने लिए स्वयं मार्ग ढूंढ ले और जनसाधारण को अपनी शक्ति प्रदर्शित करने का स्वच्छंद रूप से अवसर प्राप्त हो सके। इसी के लिए वह पेकिंग छोड़कर हैंगचो चले गए और वहां रहकर इस बात की प्रतीक्षा करने लगे कि देश में जो नई आंधी उठ रही है, उसका क्या परिणाम निकलता है। आइए अब हम चीन में महान सांस्कृतिक क्रांति के अंतर्गत रेड गार्ड्स और क्रांतिकारी समितियों के बारे में चर्चा करें। इसी समय चीन में नवयुवकों के उस संगठन का आरंभ हुआ जो रेड गार्ड्स के नाम से प्रसिद्ध है। विद्यार्थी इसमें बहुत बड़ी संख्या में शामिल हुए। रेड गार्ड्स का मुख्य कार्य यह था कि वे सब कोई की स्वतंत्रता पूर्वक आलोचना करें, किसी की भी प्रवाह ना करें। जिस किसी को समाजवाद व क्रांति का विरोधी समझे, उस पर आक्रमण करें और उग्र विचारों का सर्वत्र प्रचार करें। विद्यार्थियों में जो असंतोष था, उसका इन रेड गार्ड्स ने पूर्ण रूप से उपयोग किया। माओ त्से-तुंग का समर्थन इन्हें प्राप्त था और ये उन सब व्यक्तियों की आलोचना करने में तत्पर थे जिन्हें राज्य संस्था, कम्युनिस्ट पार्टी, कल कारखानों तथा शिक्षणालयों में कोई भी पद प्राप्त था। संभ्रांत वर्ग के ये विशेष रूप से आलोचक थे, चाहे वे वैज्ञानिक हो, चाहे विश्वविद्यालयों के प्राध्यापक हो और चाहे उच्च राजकीय पदों पर हो। ये उनकी निर्बलताओं और कर्तव्य के प्रति उपेक्षा और शक्ति के दुरुपयोग की खुले तौर पर निंदा करना अपना कर्तव्य समझते थे। लियु साओची तथा उनके साथियों ने इन्हें शांत करने का प्रयत्न किया, उनकी शिकायतें सुनी और उनके साथ अनेक रियायतें भी की, पर उन्हें सफलता नहीं मिली और रेड गार्ड्स निरंतर जोर पकड़ते गए। कुछ समय पश्चात माओ त्से-तुंग पेकिंग वापस लौट आए और उन्होंने रेड गार्ड्स को एक वैध संगठन के रूप में स्वीकार कर लिया। उनसे प्रेरणा प्राप्त कर रेड गार्ड सारे देश में फैल गए और उन्होंने स्वतंत्र विचारों का प्रचार करना आरंभ कर दिया। वे लियू साओची के विरुद्ध जनता को भड़काते और उसे क्रांतिकारी उपायों का अवलंबन करने के लिए प्रेरित करते। पर कुछ समय पश्चात रेड गार्ड्स में भी मतभेद और झगड़े आरंभ हो गए। ये झगड़े जहां रेड गार्ड्स के आपसी थे, वहां साथ ही मजदूरों, किसानों और सैनिकों से भी थे। रेड गार्ड्स संगठन में विद्यार्थियों और नवयुवकों की बहुसंख्या थी। बहुधा मजदूरों आदि के संगठनों से उनका मतभेद हो जाता था, क्योंकि आलोचना करते हुए वे कोई भी मर्यादा नहीं रखते थे। कम्युनिस्ट पार्टी के बहुत से नेता रेड गार्ड्स से परेशान थे, विशेषतया इस कारण क्योंकि वे हिंसा का प्रयोग करने में भी संकोच नहीं करते थे। नेताओं, राजपदाधिकारियों और विशेषज्ञों की आलोचना करते हुए वे बहुधा आपे से बाहर हो जाते थे। पर माओ त्से-तुंग इस दशा से चिंता का अनुभव नहीं करते थे। वे समझते थे कि चीन में जो यह तूफान उठा है, अंत में उसका परिणाम अच्छा होगा। संभ्रांत वर्ग में जो शिथिलता आ गई है, उसके दूर होने में इससे अवश्य सहायता मिलेगी। पर रेड गार्ड्स की हिंसात्मक प्रवृत्तियों का उन्होंने भी विरोध किया और सबसे यह अनुरोध किया कि वे हिंसा का आश्रय ना लेकर अपने आंदोलन को केवल विचार विमर्श, वाद विवाद तथा आलोचना तक ही सीमित रखे। पर लियू साओची और उनके साथी कम्युनिस्ट नेता रेड गार्ड्स की गतिविधियों से बहुत उद्विग्न थे। वे समझते थे कि इस संगठन के कार्यकलाप द्वारा देश में जो अव्यवस्था उत्पन्न हो रही है, उसका परिणाम बहुत भयंकर होगा। अतः पहले उन्होंने यत्न किया कि कम्युनिस्ट पार्टी के प्रचार विभाग को अधिक जागरूक किया जाए, ताकि जनता को वस्तु स्थिति का बोध कराया जा सके। विश्वविद्यालयों व शिक्षण संस्थाओं में इस विभाग ने विशेष रूप से प्रचार करना आरंभ किया, पर उसका कोई परिणाम नहीं निकला। रेड गार्ड्स का आंदोलन निरंतर जोर पकड़ता गया। इस दशा में लियू साओची ने बड़े साहस से काम लिया और रेड गार्ड्स संगठन को अवैध घोषित कर दिया। पर इससे भी रेड गार्ड्स का आंदोलन समाप्त नहीं हुआ। माओ त्से-तुंग से सहारा प्राप्त कर यह आंदोलन जारी रहा और कम्युनिस्ट पार्टी में उग्र मतभेद आरंभ हो गए। रेड गार्ड्स के प्रश्न को लेकर लियू साओची और माओ त्से-तुंग में मतभेद इतना अधिक बढ़ गया कि लियू साओची को राष्ट्रपति के पद से पृथक कर दिया गया। उनके विरुद्ध अनेक प्रकार के आक्षेप किए जाने लगे और उन्हें प्रतिक्रियावादी तथा कम्युनिस्ट आदर्शों के विरोधी के रूप में बदनाम किया गया। लियू साओची के अनेक साथी और सहयोगी भी इस समय माओ त्से-तुंग तथा रेड गार्ड्स के कोप के शिकार बने। रेड गार्ड्स के रूप में जो नया तूफान इस समय चीन में व्याप्त हो रहा था, माओ त्से-तुंग उसे देश के लिए आवश्यक समझते थे। उनका कहना था कि राज शक्ति जनसाधारण के हाथों में रहनी चाहिए, कतिपय संभ्रांत व्यक्तियों के हाथों में नहीं। चाहे यह संभ्रांत व्यक्ति कितने ही योग्य तथा विशेषज्ञ क्यों ना हो, रेड गार्ड्स के कारण इस समय चीन में इस ढंग की अव्यवस्था उत्पन्न हो गई थी कि न राजकीय पदाधिकारियों के लिए स्थिति पर काबू पा सकना संभव रहा था और न कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं के लिए। परिणाम यह हुआ कि अनेक स्थानों पर क्रांतिकारी जनसाधारण ने शक्ति हस्तगत कर ली और ऐसी क्रांतिकारी समितियों का संगठन आरंभ कर दिया जिनका कार्य देश के राजनीतिक, आर्थिक व सामाजिक जीवन का संचालन करना था। ऐसी पहली क्रांतिकारी समिति शंघाई में संगठित की गई। विद्यार्थियों और मजदूर वर्ग के बहुत से संगठनों ने इस समिति का साथ दिया और शंघाई के शासन को इसने अपने हाथों में ले लिया। कुछ ही समय में देश के अन्य बहुत से स्थानों पर इसी प्रकार की क्रांतिकारी समितियां संगठित कर ली गई और संपूर्ण चीन में क्रांतिकारी समितियों का एक जाल सा बिछ गया। ये समितियां कल कारखानों, राजकीय कार्यालयों, नगरों, शिक्षणालयों, सैनिक संस्थाओं आदि सर्वत्र संगठित कर ली गई थी और इनकी संचालन व प्रबंधन इन समितियों द्वारा ही किया जाने लगा था। जिन लोगों ने इन समितियों का विरोध किया उनके विरुद्ध उग्र उपाय प्रयुक्त किए गए और विरोधियों का दमन करने में भी कोई कसर उठा नहीं रखी गई। 1967 के अंत तक प्रायः संपूर्ण चीन में क्रांतिकारी समितियां संगठित कर ली गई थी। इन समितियों के सदस्यों की नियुक्ति किसी ऐसी निर्वाचन प्रक्रिया द्वारा नहीं की जाती थी जिसमें लोगों से बाकायदा वोट लिए जाएं। विद्यार्थियों, मजदूरों, किसानों और सैनिकों के जो बहुत से संगठन चीन में विद्यमान थे वे समितियों की सदस्यता के लिए व्यक्तियों को नामजद किया करते थे और नामजद हुए व्यक्तियों की उपयुक्तता के संबंध में खुले रूप से विचार विमर्श करते थे। जो व्यक्ति सबको स्वीकार्य हो वे ही समिति के सदस्य बना लिए जाते थे। पूंजीवादी लोकतंत्र राज्यों में चुनाव के लिए जिस प्रक्रिया का आश्रय लिया जाता है चीन के क्रांतिकारी जनसाधारण उसे समुचित नहीं मानते। उनका यह प्रयत्न रहता था कि क्रांतिकारी समितियों की सदस्यता केवल ऐसे व्यक्ति ही प्राप्त कर सके जिनको सब कोई स्वीकार्य समझे, जिनके गुण दोषों पर सुचारू रूप से विवेचन कर लिया गया हो। यह नहीं समझना चाहिए कि चीन को इन क्रांतिकारी समितियों की सदस्यता के लिए कोई संघर्ष नहीं होता था। कौन व्यक्ति इनकी सदस्यता के लिए उपयुक्त है इस विषय में प्रायः उग्र मतभेद रहते थे और कोई व्यक्ति तभी क्रांतिकारी समिति की सदस्यता को प्राप्त करता था जबकि खुले विचार विमर्श तथा आलोचना के अनंतर जनसाधारण उसे समिति के उपयुक्त स्वीकार कर ले। ये क्रांतिकारी समितियां ही थी जिन द्वारा सर्वसाधारण जनता की शक्ति अभिव्यक्त होती थी। इनके संगठन के कारण बड़े बड़े कारखानों का संचालन भी जनसाधारण के हाथों में आ गया था। इनके सदस्य प्रायः तीन प्रकार के होते थे। कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता, कम्युनिस्ट सेना के प्रतिनिधि और जनसाधारण के प्रतिनिधि। कारखानों की क्रांतिकारी समितियों में साधारण मजदूरों का प्रतिनिधित्व प्रायः 45% होता था, कम्युनिस्ट कार्यकर्ताओं का 36%, सेना का 14% और कारखानों के विशेषज्ञों व वैज्ञानिक कर्मचारियों का 5%। क्रांतिकारी समितियों के इस ढंग के संगठन के कारण कारखानों की व्यवस्था व संचालन का कार्य पूर्णतः जनसाधारण के प्रतिनिधियों द्वारा किया जाने लगा। कारखानों में जो वैज्ञानिक व इंजीनियर आदि कार्य करते थे उनके लिए भी यह आवश्यक था कि कुछ समय वे भी साधारण मजदूरों की तरह काम किया करें ताकि उनमें अपने को जनसाधारण से ऊंचा व पृथक समझने की भावना ना रह जाए। क्रांतिकारी समितियों द्वारा किसी बात का निर्णय करने के लिए वोट लेने की पद्धति को नहीं अपनाया गया था। जब कोई विषय निर्णय के लिए प्रस्तुत होता तो उस पर खुले तौर पर विचार विमर्श व वाद विवाद किया जाता, सबको अपनी सम्मति प्रकट करने का अवसर दिया जाता और यह यत्न किया जाता कि निर्णय निर्विरोध रूप में हो। क्रांतिकारी समितियों का संगठन और उन द्वारा देश के आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक जीवन का संचालन सांस्कृतिक क्रांति का एक महत्वपूर्ण परिणाम था, पर इसके लिए चीन में घोर संघर्ष की आवश्यकता हुई। कभी कभी यह संघर्ष हिंसात्मक रूप भी धारण कर लेता था, पर बहुधा इसका रूप यह होता कि सब कोई अपने विचारों को हस्तलिखित पोस्टरों, हैंडबिलों और पुस्तिकाओं द्वारा प्रकट करे, एक दूसरे के मत की कड़ी आलोचना करते थे और अपने विरोधियों पर खुले तौर पर आक्षेप करते थे। यदि कहीं यह संघर्ष हिंसात्मक रूप प्राप्त कर लेता तो स्थिति को संभालने के लिए पीपल्स लिबरेशन आर्मी का प्रयोग किया जाता था, क्योंकि यह कम्युनिस्ट सेना देश में सर्वाधिक सुसंगठित तथा अनुशासित संगठन थी। यह सेना माओ त्से तुंग के प्रति अनुरक्त थी और उन द्वारा निर्धारित नीति तथा कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के लिए सदा तैयार रहती थी। जनसाधारण द्वारा क्रांतिकारी समितियों के सुचारू रूप से संगठन में सबसे बड़ी बाधा रेड गार्ड्स के आपसी मतभेदों व विरोधों द्वारा उपस्थित की गई थी। रेड गार्ड्स में बहुत संख्या विद्यार्थियों और नवयुवकों की थी जो भली भांति अनुशासित नहीं थे, उनके विचार भी एक समान नहीं थे। कुछ रेड गार्ड अत्यधिक उग्र विचारों के थे और उन्होंने अपने पृथक संगठन बना लिए थे। यूनिवर्सिटियों, बड़े शिक्षा केंद्रों में रेड गार्ड्स के अनेक संगठन कायम हो गए थे जो बहुधा परस्पर संघर्ष में व्यस्त रहते थे। पेकिंग की तिशिघुआ यूनिवर्सिटी चीन के शिक्षा केंद्रों में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। वहाँ रेड गार्ड्स के अनेक संगठन विद्यमान थे जिनके पारस्परिक संघर्ष ने गंभीर रूप प्राप्त कर लिया था। माओ त्से तुंग ने इस संघर्ष को दूर करने का प्रयास किया। जुलाई 1967 में उन्होंने रेड गार्ड्स के विविध नेताओं से बातचीत भी की पर उन्हें सफलता नहीं हुई। इस पर पेकिंग के जनसाधारण की एक मंडली तिशिघुआ यूनिवर्सिटी आई और उसने रेड गार्ड्स के परस्पर विरोध का अंत करने का प्रयास किया। इस मंडली में पेकिंग के कारखानों में काम करने वाले उन मजदूरों के प्रतिनिधि सम्मिलित थे जो अपने अपने कारखानों में क्रांतिकारी समितियों का संगठन कर चुके थे। पीपल्स लिबरेशन आर्मी के कुछ प्रतिनिधि भी उनके साथ थे। उनकी इच्छा थी कि यूनिवर्सिटी के कैंपस में विद्यार्थियों की एक सार्वजनिक सभा का आयोजन किया जाए और वहां बातचीत द्वारा रेड गार्ड्स के परस्पर विरोध का अंत करने का प्रयत्न किया जाए, पर विद्यार्थी इसके लिए तैयार नहीं हुए। उनका कहना था कि हमें किसी भी बाहरी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है, हमें स्वयं अपने क्रांतिकारी मार्ग का निर्धारण करना है और इस विषय में हम किसी के भी परामर्श की आवश्यकता नहीं समझते। पर पेकिंग के जनसाधारण के प्रतिनिधियों की मंडली निराश नहीं हुई। उसने निश्चय किया कि यूनिवर्सिटी के कैंपस में पहुंचकर वहां विद्यार्थियों से संपर्क स्थापित किया जाए और उनके मतभेदों व झगड़ों का अंत किया जाए। विद्यार्थियों ने समझा कि यह उनकी स्वतंत्रता में हस्तक्षेप है और जनसाधारण की मंडली उन्हें क्रांतिकारी मार्ग से हटाने के लिए प्रयत्न कर रही है। जो भी अस्त्र शस्त्र उनके पास थे उन्हें लेकर वे जनसाधारण की मंडली का मुकाबला करने के लिए कटिबद्ध हो गए और उन्होंने मंडली के सदस्यों पर आक्रमण आरंभ कर दिया। मंडली के अनेक सदस्य चाहते थे कि विद्यार्थियों के इस सशस्त्र आक्रमण का सख्ती के प्रयोग द्वारा प्रतिरोध किया जाए। पीपल्स लिबरेशन आर्मी के सैनिक अपना कर्तव्य समझते थे कि इस अवसर पर वे शक्ति का प्रयोग करने में संकोच न करें, पर मंडली के बहुसंख्यक सदस्यों का विचार था कि रेड गार्ड्स क्रांति के पक्षपाती हैं और यदि इस समय वे पथभ्रष्ट हो गए हैं तो उन्हें सही मार्ग पर लाने के लिए शक्ति का प्रयोग किए बिना भी काम चल सकता है। विद्यार्थियों के हिंसात्मक आक्रमण के बावजूद भी जनसाधारण की मंडली तथा पीपल्स लिबरेशन आर्मी के सैनिक शांत रहे और धीरे धीरे विद्यार्थियों ने यह अनुभव कर लिया कि यह मंडली उनके विरुद्ध शक्ति का प्रयोग करने के लिए नहीं आई है और उस पर हिंसात्मक आक्रमण करना सर्वथा निरर्थक है। वे बातचीत के लिए तैयार हो गए और कई दिनों तक विद्यार्थियों और जनसाधारण की मंडली के सदस्यों में विचार विमर्श होता रहा। जो कार्य माओ त्से तुंग नहीं कर सके थे उसे संपन्न करने में इस मंडली को सफलता प्राप्त हो गई और धीरे धीरे विद्यार्थी आपस के मतभेदों को दूर करने तथा अनुशासित रूप में क्रांति के मार्ग पर अग्रसर होने के लिए तैयार हो गए। यूनिवर्सिटी के कैंपस में विद्यार्थियों की एक सार्वजनिक सभा का आयोजन किया गया जिसमें कतिपय ऐसे प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए जिन्हें निर्विरोध रूप से सबने स्वीकार किया। इस प्रकार तिशिघुआ यूनिवर्सिटी के रेड गार्ड्स के मतभेदों तथा परस्पर विरोधों का अंत हुआ। अपने प्रयत्न में सफलता प्राप्त कर बेकिंग के जनसाधारण की मंडली के कतिपय प्रतिनिधियों ने माओत सेतुंग से भेंट की और उनकी सफलता के समाचार से प्रसन्न होकर माओत सेतुंग ने उन्हें कुछ आम उपहार के रूप में प्रदान किए। ये आम पाकिस्तान के एक डेलीगेशन ने माओ को भेंट किए थे। रेड गार्ड्स के परस्पर विरोधों और संघर्षों को दूर करने के लिए चीन में किस ढंग से प्रयत्न किया जा रहा था उसका यह एक उत्तम उदाहरण है। क्रांतिकारी समितियों को संगठित करते हुए तथा देश की सांस्कृतिक क्रांति के मार्ग पर अग्रसर करते हुए जो संघर्ष चीन में आरंभ हुए वे सब रेड गार्ड्स के मतभेदों तथा परस्पर विरोधों के ही परिणाम नहीं थे। फरवरी 1967 में कम्युनिस्ट पार्टी के अनेक उच्च पदाधिकारियों ने कतिपय बड़े नगरों में क्रांति के नाम पर स्वयं शक्ति प्राप्त कर ली थी और ऐसी क्रांतिकारी समितियां संगठित कर ली थी जिसमें जनसाधारण के लिए कोई भी स्थान नहीं था। उच्च स्थिति प्राप्त किए हुए ये कम्युनिस्ट नेता समझते थे कि वे सर्वसाधारण जनता के प्रतिनिधि हैं और उसकी ओर से स्वयं निर्णय कर सकते हैं, पर यह उनकी भूल थी। सांस्कृतिक क्रांति के परिणाम स्वरूप जो चेतना इस समय चीन के जनसाधारण में उत्पन्न हो गई थी उसके कारण लोग इन कम्युनिस्ट पदाधिकारियों की स्वेच्छाधारिता को सहन नहीं कर सके। वे उनका प्रतिरोध करने के लिए सनद हो गए। चीन में वुहान नामक एक नगर है जो हान और यांगत्से नदियों के संगम पर स्थित है। यह एक बड़ा औद्योगिक केंद्र है। यहाँ भी कम्युनिस्ट पार्टी के कतिपय उच्च पदाधिकारियों ने एक क्रांतिकारी समिति का संगठन कर सब शक्ति अपने हाथों में ले ली थी। क्रांति की भावना से अभिभूत जनसाधारण उनके विरुद्ध उठ खड़े हुए और उनके संघर्ष ने अत्यंत उग्र एवं हिंसात्मक रूप प्राप्त कर लिया। स्थिति को संभालने के लिए पीपल्स लिबरेशन आर्मी को हस्तक्षेप करना पड़ा और बल का प्रयोग करके ही वहां पर शांति स्थापित हो सकी। इस प्रकार के सशस्त्र संघर्ष अन्य भी अनेक स्थानों पर हुए। वस्तुतः सांस्कृतिक क्रांति के तूफान द्वारा चीन में बहुत से लोगों तथा संगठनों ने स्वच्छंद रूप से आचरण आरंभ कर दिया था जिसके कारण उनमें संघर्ष का उत्पन्न हो जाना सर्वथा स्वाभाविक था। मौत से तुंग को सर्वसाधारण जनता की जिस सूझबूझ तथा शक्ति पर आगाध विश्वास था अंत में वह सफल हुई और 1967 की शरद ऋतु तक चीन के आंतरिक संघर्षों में बहुत कमी आ गई। पर इसके बाद भी अनेक ऐसी घटनाएं होती रही जो रेड गार्ड्स के आपसी मतभेदों का परिणाम थी। देश में व्यवस्था भली भांति तभी स्थापित हो सकती थी जबकि रेड गार्ड्स के आपसी संघर्षों का अंत हो जाए। इसके लिए यह उपयोगी समझा गया कि विद्यार्थियों और नवयुवकों को जनसाधारण के घनिष्ठ संपर्क में आने का अवसर दिया जाए। सर्वसाधारण लोग मजदूरों के रूप में कल कारखानों में काम करते रहें और किसान के रूप में खेतों में। मजदूरों और किसानों के बीच में रहकर उनके साथ काम करके ही उनके मनोभाव तथा समस्याओं को समझा जा सकता है। विद्यार्थी और शहरों के नवयुवक रेड गार्ड्स में सम्मिलित थे और क्रांति के समर्थक भी थे, पर जनसाधारण से सीधा संपर्क न होने के कारण वे प्रायः सैद्धांतिक विवादों में ही घिरे रहते थे। उनके मतभेदों तथा परस्पर विरोधों का यह एक महत्वपूर्ण कारण था। अतः यह निश्चय किया गया कि रेड गार्ड्स को किसानों तथा मजदूरों के साथ काम करने और उनके बीच में रहने के लिए प्रेरित किया जाए। अक्टूबर 1968 तक बहुत से विद्यार्थी और नवयुवक जनसाधारण के घनिष्ठ संपर्क में रहने लग गए थे जिसके कारण उनसे मतभेद व विरोध स्वयं दूर होने शुरू हो गए थे। इस समय तक प्रायः संपूर्ण चीन में ऐसी क्रांतिकारी समितियां भी संगठित कर ली गई थी जो सच्चे अर्थों में जनसाधारण का प्रतिनिधित्व करती थी। परिणाम यह हुआ कि चीन में एक बार फिर शांति और व्यवस्था स्थापित हो गई और सांस्कृतिक क्रांति के कारण जो भारी तूफान देश में उठ खड़ा हुआ था वह धीरे धीरे शांत होने लग गया। 1966 से 68 तक चीन के इतिहास में सांस्कृतिक क्रांति का काल था। इसमें अंतगोत्वा जनसाधारण की विजय हुई और क्रांतिकारी शक्तियां प्रतिक्रियावादियों को कुचल डालने में समर्थ हुई। यह सही है कि इस क्रांतिमय संघर्ष में हिंसात्मक साधन भी प्रयोग किए गए, पर साथ ही यह भी सत्य है कि हिंसात्मक संघर्ष केवल कुछ बड़े नगरों तक ही सीमित रहा और उसने कभी देशव्यापी रूप प्राप्त नहीं किया। वस्तुतः सांस्कृतिक क्रांति में दो विभिन्न विचारधाराएं आपस में संघर्ष करती रहीं। 1949 में चीन में जो कम्युनिस्ट क्रांति हुई थी उस द्वारा पूंजीपतियों तथा जमींदारों के हाथों से शक्ति छीन ली गई थी और सर्वसाधारण जनता ने शक्ति प्राप्त कर ली थी, पर अभी चीन में वर्ग संघर्ष का अंत नहीं हुआ था और उच्च सरकारी पदाधिकारियों, वैज्ञानिकों, कम्युनिस्ट नेताओं तथा बुद्धिजीवी लोगों के रूप में एक नया वर्ग वहां विकसित हो गया था जो अपने को जनसाधारण से अलग समझता था और सर्वसाधारण किसान मजदूर जनता के हितों की तुलना में अपने वर्ग के हितों को अधिक महत्व देता था। लियु शाओची इसी वर्ग के प्रतिनिधि थे। सांस्कृतिक क्रांति इसी वर्ग के विरुद्ध जनसाधारण का संघर्ष था, पर इस संघर्ष में सर्वसाधारण जनता ने नए सम्भ्रांत वर्ग के विरुद्ध हिंसा का प्रयोग नहीं किया। सोवियत रूस में कितने ही कम्युनिस्ट नेताओं को उनके विचारों के कारण न केवल पदच्युत किया गया अपितु उन्हें मृत्युदंड भी दिया गया, पर चीन में मौत से तुंग के नेतृत्व में जो सांस्कृतिक क्रांति हुई उसमें लियु शाओची जैसे विरोधियों को मृत्युदंड देने की कोई आवश्यकता नहीं समझी गई। उन्हें पद से अवश्य हटा दिया गया पर कारागार तक का दंड उन्हें नहीं दिया गया। चीन में जिन कम्युनिस्ट नेताओं को क्रांति का विरोधी समझा गया उन्हें या तो अपदस्थ कर दिया गया या उन्हें उच्च पद से हटाकर कोई साधारण पद दे दिया गया और या उन्हें कल कारखानों तथा खेतों में काम करने के लिए भेज दिया गया ताकि सर्वसाधारण किसान मजदूर जनता के बीच में रहकर वे जनता की मनोभावों, विचारों तथा समस्याओं को समझ सकें और अपने मंतव्यों में परिवर्तन करने का अवसर प्राप्त कर सके। माओ त्से तुंग ने इस नीति को स्पष्ट करते हुए एक बार कहा था, जब कोई डॉक्टर किसी रोगी की चिकित्सा करता है तो वह उसके रोग का इलाज करने का प्रयत्न करता है ताकि रोगी स्वस्थ होकर जीवित रह सके। इसमें संदेह नहीं कि सम्भ्रांत वर्ग के जिन बहुत से व्यक्तियों को उच्च पदों से हटाकर किसानों और मजदूरों के साथ काम करने के लिए भेजा गया था उनमें से कतिपय के विचारों में बाद में परिवर्तन आ गया और उन्हें फिर से उन पदों पर नियुक्त कर दिया गया जिससे उन्हें अपदस्थ किया गया था। चीन के कम्युनिस्टों का दावा है कि सांस्कृतिक क्रांति के कारण उनका देश वर्ग संघर्ष से प्रायः मुक्त हो गया है। पूंजीवादी देशों में जमींदारों और पूंजीपतियों के रूप में जो शोषक वर्ग हुआ करता है चीन में उसका अंत तो 1949 की क्रांति के समय ही हो गया था, पर सोवियत रूस और उसके अनुयायी कम्युनिस्ट देशों में जो एक नया सम्भ्रांत वर्ग विकसित हो गया है जो जनसाधारण से अपने को पृथक रखता है चीन में उस वर्ग का भी अंत कर दिया गया है और इसके लिए उस प्रकार के हिंसात्मक साधनों की आवश्यकता नहीं हुई जैसे कि क्रांति के समय प्रयुक्त हुआ करते हैं। इसका यह कारण था कि कम्युनिस्ट चीन में सोवियत रूस के समान जो नया सम्भ्रांत वर्ग विकसित हो गया था उसके बहुसंख्यक व्यक्ति प्रतिक्रियावादी या संशोधनवादी नहीं थे। वे सर्वसाधारण जनता से अपने को उच्च समझने लग गए थे क्योंकि उन्हें जनसाधारण के साथ संपर्क में आने को समुचित अवसर प्राप्त नहीं हुए थे। आवश्यकता केवल यह थी कि उन्हें यह अवसर प्रदान किए जाए ताकि किसान मजदूर जनता के घनिष्ठ संपर्क में आने के कारण उनके विचारों तथा मनोवृत्तियों में परिवर्तन आ सके। साथ ही उन्हें यह बोध कराया जाना जरूरी था कि वे गलत मार्ग का अनुसरण करने में प्रवृत्त हैं। इसका उपाय उनके कार्यों तथा मनोवृत्ति की खुलकर आलोचना करना ही था। सांस्कृतिक क्रांति के समय जनसाधारण को इस बात की खुली छूट मिल गई थी कि वे अपने देश के शासकों, कल कारखानों के प्रबंधकों और कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं की स्वतंत्र रूप से आलोचना करें और उन्हें उनकी कमियों तथा दोषों का बोध कराए। सम्रांत वर्ग के बहुसंख्यक व्यक्तियों पर इस आलोचना का अच्छा प्रभाव पड़ा और अपनी भूलों का बोध हो जाने पर वे स्वयं भी अपनी आलोचना करने में प्रवृत्त हुए। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के विरोधियों का कहना है कि वहां इन लोगों पर इस प्रकार के दबाव डाले गए जिससे विवश होकर इन्होंने स्वयं अपनी आलोचना आरंभ कर दी और अपनी जान बचाने के लिए मौत से तुंग की हाँ में हाँ मिलाना शुरू कर दिया। पर चीन के वे अनेक क्रांतिकारी कम्युनिस्ट नेता जिन्होंने कभी कुमिंगतांग तथा जापान के विरुद्ध संघर्ष में अनुपम वीरता प्रदर्शित की थी और जो कम्युनिज्म की सफलता के लिए बड़े से बड़ा बलिदान करने को तैयार थे, अब अकस्मात इतने गिर गए थे कि अपनी जान बचाने के लिए वे स्वयं अपने भूले स्वीकार करने लग गए थे। यह एक ऐसी बात है जिसे सही नहीं माना जा सकता है। संभवतः सत्य यह है कि मनुष्य अपने व्यक्तिगत हितों तथा उत्कर्ष को सर्वाधिक महत्व देने की प्रवृत्ति रखता है और चीन के संभ्रांत लोग भी इस प्रवृत्ति से बच नहीं सके थे, पर जनसाधारण की शक्ति के सम्मुख उन्हें झुक जाना पड़ा और उन द्वारा अपने कृत्यों की कड़ी आलोचना सुनकर वे अपने भूलों को स्वीकार करने के लिए विवश हो गए। सन 1966 में सांस्कृतिक क्रांति का के रूप में जो तूफान चीन में उठ खड़ा हुआ वह अब शांत हो गया है, पर इस क्रांति की प्रक्रिया अब भी जारी है और मौत से तुंग के नेतृत्व में चीन एक ऐसे वर्गविहीन समाज के निर्माण में तत्पर है जिसका रूस में अभी भी अभाव है। चीन में महान सांस्कृतिक क्रांति के अंतर्गत अब हम सम्रांत वर्ग के प्रशिक्षण के लिए स्थापित किए गए शिक्षण संस्थाओं पर चर्चा करेंगे। प्रशासकों, राजपदाधिकारियों, कल कारखानों के प्रबंधकों, यूनिवर्सिटियों के अध्यापकों, वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं के रूप में जो एक नया सम्भ्रांत वर्ग चीन में विकसित हो गया था और जनसाधारण की तुलना में जो अपने को ऊंचा समझने लगा था, उसकी मनोवृत्ति को बदलने तथा सर्वसाधारण किसान मजदूर जनता के साथ उसका संपर्क स्थापित करने के प्रयोजन से चीन में जो अनेक शिक्षण संस्थान सांस्कृतिक क्रांति के समय स्थापित किए गए उन पर प्रकाश डालना बहुत ही उपयोगी है। जिन लोगों को हमने अभी सम्भ्रांत वर्ग का कहा है, उनके लिए यह आवश्यक है कि वे कुछ समय इन शिक्षण संस्थानों में व्यतीत करें। इस समय की अवधि प्रायः 6 मास रखी गई है। यद्यपि शुरू में अनेक व्यक्तियों को 1 व 2 साल के लिए भी इनमें रखा गया था। प्रत्येक सरकारी विभाग अपने पदाधिकारियों से कुछ को इन शिक्षण संस्थानों में भेजता रहता है। यूनिवर्सिटियों के प्रोफेसर, कल कारखानों में काम करने वाले इंजीनियर, प्रबंधक और वैज्ञानिक भी बारी बारी से इनमें भेजे जाते हैं। कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं को भी इनमें जाकर रहना होता है और ये अपने परिवारों को भी अपने साथ रहने के लिए शिक्षण संस्थानों में ला सकते हैं या इन्हें यह अनुमति रहती है कि सप्ताह में 1 बार जाकर अपने परिवारजनों से मिल आए। शिक्षण संस्थानों में रहते हुए इन्हें वह वेतन मिलता रहता है जो कि सरकारी पद पर काम करते हुए, कल कारखानों में काम करते हुए या यूनिवर्सिटी में प्राप्त होता था। शिक्षण संस्थानों में रहते समय सम्भ्रांत वर्ग के ये व्यक्ति किसानों और मजदूरों की तरह ही काम करते हैं। इन्हें सब काम अपने हाथ से करना पड़ता है। खेत में हल चलाना, फसल काटना, टोकरी उठाना, कपड़े बुनना, आदि कार्य ये उसी ढंग से करते हैं जैसे कि साधारण किसानों और मजदूरों द्वारा किए जाते हैं। इससे इन्हें जन साधारण के निकट संपर्क में आने का अवसर मिलता है और ये किसानों तथा मजदूरों के मनोभाव तथा समस्याओं को भली भांति समझने लगते हैं। इन शिक्षण संस्थानों के साथ जहां खेत रहते हैं वहां अनेक कारखाने भी कायम किए जाते हैं ताकि संभ्रांत वर्ग के व्यक्ति उनमें अपने हाथ से काम कर सके। यह स्वाभाविक है कि शुरू में व्यक्ति अपने हाथ से काम करने में कष्ट का अनुभव करें, पर धीरे धीरे इन्हें इस प्रकार के कार्य की आदत पड़ जाती है और ये उसमें आनंद प्राप्त करने लगते हैं। इस प्रकार उनकी मनोवृत्ति में परिवर्तन होने लगता है और वे अपने को जनसाधारण का अंग समझने लगते हैं। अपने उच्च होने की जो भावना उनमें उत्पन्न हो गई थी वो धीरे धीरे दूर हो जाती है। साधारण किसानों और मजदूरों के साथ मिलकर मेहनत मजदूरी करने के साथ साथ इन शिक्षणालयों में संभ्रांत वर्ग के लोगों को मार्क्स, लेनिन, मौत से तुंकी विचार सरणी का भी अध्ययन कराया जाता है। इनके संबंध में वहां प्रवचन दिए जाते हैं और उन पर विचार विमर्श व वाद विवाद होता है। इसमें उन्हें कम्युनिस्ट सिद्धांतों को समझने में सहायता मिलती है। इन शिक्षण संस्थानों में छोटे बड़े राज कर्मचारी, सब स्तरों के वैज्ञानिक, प्राध्यापक और इंजीनियर तथा कम्युनिस्ट पार्टी के ऊंचे तथा साधारण सदस्य एक साथ निवास करते हैं और एक जैसा जीवन व्यतीत करते हैं। इससे उनमें छोटे बड़े का भेद मिट जाता है। सरकार के उच्च पदाधिकारियों में प्रायः यह प्रवृत्ति रहती है कि वो दूसरों से बरतते हुए जुआब से काम ले और अपनी अधीनस्थ कर्मचारियों को नीची निगाह से देखें और जनसाधारण से कोई संपर्क ना रखें। पर इन शिक्षण संस्थानों में सब प्रकार के लोगों के साथ रहने और उनके साथ मिलकर मामूली प्रकार से श्रम करने से उनमें सबके प्रति समानता की भावना विकसित होने लगती है और वे अपने पृथक वर्ग का विचार खत्म कर देते हैं। इसलिए संभ्रांत वर्ग के इन व्यक्तियों को बार बार इन शिक्षण संस्थानों में भेजा जाता है और वहां निवास करते हुए भी अनेक बार उनसे यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपने प्रधान कार्यस्थल पर जाकर ऐसे कार्य करें जो उनके अधीनस्थ कर्मचारियों व चपरासी आदि साधारण श्रमिकों द्वारा किए जाते हैं। जिस कार्यालय या यूनिवर्सिटी में वे सामान्यतः बड़े प्रोफेसर या अफसर होते हैं वहां कभी कभी फर्श व सड़क पर साफ करने, मैला उठाने और गंदगी धोने तक का काम भी उनसे लिया जाता है। इसका परिणाम यह होता है कि उनमें अपने उच्च व संभ्रांत होने का विचार जाता रहता है और न श्रम को हीन समझते हैं। निसंदेह ये शिक्षण संस्थान चीन की सांस्कृतिक क्रांति के महत्वपूर्ण अंग है। केवल पूंजीवादी देशों में ही नहीं अपितु सोवियत रूस और पूर्वी यूरोप के विविध कम्युनिस्ट राज्यों में भी जनसाधारण की दशा को उन्नत करने का, गरीबी हटाने का, विषमता दूर करने का और आर्थिक योजनाएं तैयार करने का ऐसे व्यक्तियों द्वारा काम किया जाता है जो जनसाधारण के साथ कोई संपर्क नहीं रखते, जिन्हें उनकी समस्याओं का प्रत्यक्ष अनुभव नहीं होता है। इस कारण वे समस्याओं की गहराई में नहीं जा पाते हैं। पर चीन में यह दशा नहीं है। वहां सैकड़ों की संख्या में ऐसे शिक्षण संस्थान स्थापित हैं जिनमें निवास के कारण संभ्रांत व उच्च शिक्षित व्यक्तियों में अपनी उच्चता व जनसाधारण से पृथकत्व की भावना विकसित ही नहीं होने पाती। पर इन शिक्षण संस्थानों में उन्हें यही सिखाया जाता है कि वे देश की उन्नति के लिए सर्वसाधारण किसान मजदूर लोगों पर निर्भर करें, उन्हें भली भांति समझें और उन्हीं के समान अपना जीवन बिताएं, उनके साथ मिलजुल कर काम करें, उनके काम में हाथ बटाएं और उनको अपने साथ एक कर लें, पर सांस्कृतिक क्रांति अपने उद्देश्यों में पूर्ण रूप से सफल नहीं हुई है। अक्टूबर 1968 में माओत्सेतुंग ने अपने भाषण में कहा था, हमने एक भारी विजय प्राप्त कर ली है, पर प्रास्त वर्ग भविष्य में भी अपने संघर्ष को जारी रखेगा। यह संभ्रांत वर्ग अभी पूर्णतः नष्ट नहीं हुआ है, वह अब भी विद्यमान है। अतः हम अभी यह नहीं कह सकते कि हमारी पूर्ण रूप से विजय हो गई है। अभी कितनी ही दशाब्दियों तक हमें उनसे सावधान रहना होगा।